सो दिस इज सीएस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. अब देखना, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं द चैप्टर ऑफ कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट अगेन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, एग्जाम ऑरिएंटेड चैप्टर है. कंपनी ऑडिट के अंदर वी हैव चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 10 कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 139 to 148. सेक्शन 139 to 148. तो सबसे पहले सेक्शन 139 दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट होता है रिमूवल, दैट इज सेक्शन 140 विच टॉक्स अबाउट द रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. ऑडिटर का रिमूवल होता है बिकॉज इज डिसक्वालिफाइड, तो 141 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन. तो 139 अपॉइंटमेंट की बात करता है, 140 रिमूवल की बात करता है, 141 क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है. अब मैं तो अज्यूम करता हूँ कि आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, आई एम क्वालिफाइड, और जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट होता है मैं किसकी बात करूँगा, रेमुनरेशन की बात करूँगा. तो 142 रेमुनरेशन की बात करता है. अब जैसे ही हम रेमुनरेशन की बात करते हैं, हमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिला दिए जाते हैं. तो 143 टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज. तो 139 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट, 140 टॉक्स अबाउट द रिमूवल रेजिग्नेशन, 140 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, 142 टॉक्स अबाउट द रेमुनरेशन, 143 टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज. ड्यूटी परफॉर्म करते करते कुछ ऐसा होता है कि ऑडिटर को एड्स हो जाता है, तो 144 में अपने को याद रखना है एड्स. अब ऑडिटर मरने वाला है, बिफोर डाइंग वो क्या कर रहा है, अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर रहा है, यानी सबसे पहले वो रिपोर्ट को साइन कर देगा एंड देन विल बी अटेंडिंग द एजीएम फॉर द लास्ट टाइम. तो 145 इज साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड 146 इज अटेंडिंग द एजीएम. अगर उसने कहीं भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो 147 में लगेगी पेनल्टी, और पेनल्टी में इंकर करना पड़ेगा कॉस्ट, दैट इज 148 कॉस्ट ऑडिट. नाउ यू सी, इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 139 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो इट इज वेरी वेरी लॉजिकल दैट द पावर टू अपॉइंट ऑडिटर्स शैल ऑलवेज बी विद द शेयर होल्डर्स, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट टॉकिंग अबाउट दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, एजीएम बहुत दूर है, तो फॉर द टाइम बिंग लॉ में कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देगा. तो द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बट लॉजिकली ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर्स मेंबर्स के पास है, बोर्ड ने सिर्फ टाइमिंग अपॉइंट किया है, यानी जिस ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया है उसका टेन्योर सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक ही वैलिड होगा, सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक ही वैलिड होगा. फर्स्ट एजीएम को अल्टीमेटली अपॉइंट कौन करेंगे, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, और उस ऑडिटर का टेन्योर 5 years का होगा, यानी द टेन्योर शैल बी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. तो नॉर्मली हमने बोला कि फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हमेशा बोर्ड करेगा, 30 days में करेगा. सपोज अगर बोर्ड फेल हो जाती है तो लॉ कहता है कि हर हालत में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट 90 डेज में हो जाना चाहिए, यानी नेक्स्ट 60 डेज में द मेंबर्स विल हैव टू अपॉइंट, राइट. एंड द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शैल एक्सरसाइज हिज टेन्योर टिल द एजीएम. इन एजीएम इट इज द मेंबर्स विल बी अल्टीमेटली अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स एंड हिज टेन्योर विल बी फॉर 5 years फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. अब सवाल उठता है कि 6th AGM के बाद क्या ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द डीम्ड रीअपॉइंटमेंट प्रोविजन, जहां कहा गया है कि द सेम ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड, मगर अगर ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है, या फिर ऑडिटर ने अपनी रेजिग्नेशन सबमिट कर दी है, या फिर कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके किसी और को अपॉइंट कर दिया है, तो उस ऑडिटर का डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. इन सर्कमस्टेंसेज में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. अब ये जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है, दिस इज फॉर द नॉर्मल कंपनीज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, तो गवर्नमेंट कंपनीज का डेफिनेशन है 2 clause 45 के अंदर, जहां कहा गया है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां एटलीस्ट 51% ऑफ द होल्डिंग CG या SG की होनी चाहिए. गवर्नमेंट कंपनी के केस में माई बाप इज द कैग, तो चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग करेगा. अब लेकिन कैग एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो 30 डेज की जगह 60 days, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कैग विद इन 60 days, और अगर कैग फेल हो जाती है तो बोर्ड विद इन 30 days, और अगर बोर्ड फेल हो जाती है तो मेंबर्स विद इन नेक्स्ट 60 days, यानी दैट क्राइटेरिया रिमेंस द सेम. सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग करेगा, विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अब जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, सपोज लेट अस से लेटर ऑन वो अनसाउंड माइंड का हो गया, लेटर ऑन वो डिसक्वालिफाइड हो गया, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, तो लॉ फिर से कहता है कि आपको एजीएम दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है, फॉर द टाइम बिंग कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फुलफिल कर देगा 30 days के अंदर. लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है और रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करेगा और मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 3 months. मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 3 months. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सेक्शन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 to सबसेक्शन 4. अब रोटेशन के कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल 1 term तक काम करेगा कंसेक्यूटिव 5 years, और फर्म टू टर्म्स तक काम करेगी कंसेक्यूटिव 10 ईयर्स एंड देन देयर विल बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. तो इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फर्म के लिए 2 टर्म्स ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, देन देयर विल बी 5 ईयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड. इन द कूलिंग ऑफ पीरियड द फर्म और द इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, अपॉइंट नहीं हो सकते. अब ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज में एप्लीकेबल है, उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में एप्लीकेबल है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 CR, या फिर प्राइवेट कंपनीज में एप्लीकेबल है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 CR, या किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल है, किसी भी कंपनी में, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे लिस्टेड हो, चाहे अनलिस्टेड हो, जिसकी बोरिंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 CR. एंड रोटेशन कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसीज में एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है. तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा? लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे लगेगा जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, एंड एनी कंपनी जिनका बोरिंग्स बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट से ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़. और एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए. जब कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो नई फर्म अपॉइंट होगी कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इनकमिंग ऑडिटर है वो आउटगोइंग पार्टनर के साथ, फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए. उसके बाद सेक्शन 140, दैट इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. अब सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन. ऑडिटर जब भी रिजाइन करेगा वो अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करेगा, 30 डेज में इन्फॉर्म करेगा, और अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो कैग को इन्फॉर्म करेगा. और मान लीजिए 140 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर ऑडिटर वहाँ पर इंटीमेशन नहीं देता तो पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी एक अमेंडेड पेनल्टी है. पहले कहा गया था पेनल्टी होगी 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक, अब कहा गया पेनल्टी होगी मिनिमम 50,000 रुपये और ऑडिट फीस विच एवरेज लोअर एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपये. उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के 3 क्लासिफिकेशंस हैं, रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल. अगर ऑडिटर को टर्म से पहले निकाला जाता है, सबसे पहले आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, फिर आप सीजी के अप्रूवल लोगे, फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, आप ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड भी दोगे. उसके बाद अगर ऑडिटर को स्पेशल नोटिस के थ्रू निकाला जाता है तो सेक्शन 115 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, 115 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि जिस भी मेंबर के पास 1% ऑफ वोटिंग राइट है या 5 लाख ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल है वो बंदा कंपनी को नोटिस दे सकता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर. उस नोटिस को स्पेशल नोटिस कहेंगे. कंपनी उस नोटिस की कॉपी मेंबर्स को सर्कुलेट करेगी और एक कॉपी ऑडिटर को फॉरवर्ड करेगी. अब ऑडिटर को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट मिलेगा कि उसे क्यों ना निकाला जाए. तो ऑडिटर के पास राइट होगा टू गेट हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन बीइंग सर्कुलेटेड अमंग ऑल द मेंबर्स. लेकिन सपोज रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ऑडिटर के पास राइट होगा टू मेक एन ओरल रिप्रेजेंटेशन. और अगर ऑडिटर अपने ओरल रिप्रेजेंटेशन के राइट को अब्यूज करता है, अपनी अनडिजायरेबल पब्लिसिटी करता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. उसके बाद थर्ड सर्कमस्टेंस है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल. ऑडिटर ने फ्रॉड किया, फ्रॉडुलेंट मैनर पे काम किया, ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से या फिर सीजी के एप्लीकेशन से या कंसर्न्ड पर्सन के एप्लीकेशन से ऑडिटर को रिमूव कर सकती है. अगर ट्रिब्यूनल 140 के तहत ऑडिटर को रिमूव कर देती है देन द पर्सन रिमूव्ड एज एन ऑडिटर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर इन एनी कंपनी व्हाटसोएवर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड ऑल्सो ही शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. वो 447 के अंदर फ्रॉड के लिए भी लायबल होगा. उसके बाद सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स. 141 सबसेक्शन 1 कहता है कि इंडिविजुअल जिसके पास सीओपी है ही कैन बी द ऑडिटर. सबसेक्शन 2 कहता है फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी द ऑडिटर. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन. सबसेक्शन 4 अबाउट वैकेशन. सबसेक्शन 3 के डिस्क्वालिफिकेशन को हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं सेक्शन बहुत सिंपल बन जाता है. पहला यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन इन द सेम कंपनी, एंड तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन इन कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज. यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन में कौन आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट. कौन आएगा? ऑफिस फुल टाइम एम्प्लॉय. फिर कौन आएगा? कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड. फिर क्या हो गया? सेलिंग लिमिट एक्सीड्स 20. बट ऑब्वियसली जब सेलिंग लिमिट एक्सीड्स 20 की बात करते हैं हम तो वहाँ पे कहा गया है कि ओपीसीज के ऑडिट को, डोरमेंट कंपनीज के ऑडिट को, स्मॉल कंपनीज के ऑडिट को एंड प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उनको सेलिंग लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा. यानी ऑडिटर चाहे उतने ओपीसीज का, डोरमेंट कंपनीज का, स्मॉल कंपनीज का या प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उनका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है. बट यहाँ पे एक रिसेंट अमेंडमेंट है, अगर प्राइवेट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आरओसी और एनुअल रिटर्न्स टू आरओसी तो प्राइवेट कंपनीज इस एक्सक्लूजन में नहीं आएगा और वो सेलिंग लिमिट में काउंट होंगी.
उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन इन द कंपनी, जहां पे वर्ड इन द कंपनी यूज किया है, जैसे कि ऑफिसर और एम्प्लॉय, जैसे कि ऑफिसर और एम्प्लॉय, जैसे कि रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और के एम पी, रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और के एम पी. उसके बाद थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन इज कंपनी प्लस द ग्रुप कंपनीज, जहां कंपनी के साथ पूरी की पूरी जो चेन है, होल्डिंग, सबसी, एसोसिएट, सबको इंक्लूड किया गया है. उसके अंदर तीन क्लॉजेज हैं. सबसे पहले 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, जहां पे कहा गया है कि एक बंदे का खुद का या उसके रिलेटिव का या उसके पार्टनर का अगर कंपनी में कोई सिक्योरिटी ली हुई है, सिक्योरिटी होल्ड की हुई है, ही इज डिस्क्वालिफाइड इन द कंपनी प्लस द ग्रुप कंपनीज, या फिर इनडेप्टनेस की लिमिट 5 लाख रुपए से ज्यादा है, या गारंटी की लिमिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, देन अगेन ही इज डिस्क्वालिफाइड इन द कंपनी. तो अगर खुद का या उसके रिलेटिव का या उसके पार्टनर का सिक्योरिटी में होल्डिंग है, या 5 लाख रुपए से ज्यादा इनडेप्टनेस है, या 1 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी है, डिस्क्वालिफिकेशन है. बट वहां पे एक एक्सेप्शन है कि रिलेटिव चाहे तो 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, अप टू 1 लाख रुपए फेस वैल्यू होल्ड कर सकता है. सपोज आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हो और ग्रेजुअली आपके रिलेटिव 1 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्ड कर लेता है, तो ऑडिटर के पास 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का टाइम है. क्लियर है? उसके बाद अगला क्लॉज है बिजनेस रिलेशनशिप, कि अगर आपके या आपके फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या कंपनी के ग्रुप कंपनीज के साथ, तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो. मगर अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप आर्म्स लेंथ बेसिस में है, अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप आर्म्स लेंथ बेसिस में है, डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं होगा. एंड तीसरी चीज, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को या उसके होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी को 144 सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो. अब ध्यान रखने की बात है कि जब हमने बात की थी 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी की, यानी सिक्योरिटी वाले पॉइंट की, तो वहां कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सबसी के साथ, एसोसिएट, सबसी ऑफ होल्डिंग सब कुछ आ गया था. जब बिजनेस रिलेशनशिप की बात की थी तब भी कंपनी के साथ होल्डिंग, सबसी, एसोसिएट, सबसी ऑफ होल्डिंग सब कुछ आ गया था. इनफैक्ट सबसी ऑफ एसोसिएट भी कवर हो गया था. जबकि अगर हमने बात की 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की, प्रोवाइडिंग 144 सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ कंपनी, होल्डिंग, सबसी अट्रैक्ट हुई है, यहाँ पे एसोसिएट जॉइंट वेंचर को कवर नहीं किया गया है. 144 की सर्विसेज क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, दैट इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, दैट इज एड्स, हमारा फॉर्मूला था एड्स, दैट इज अकाउंटिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड सर्विसेज, यानी अदर सर्विसेज. अब याद रखिएगा, अगर आप 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफाइड हो, इसका मतलब है कि आपको 141 सबसेक्शन 4 में ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, और 141 सबसेक्शन 4 में ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर अंडर 139 सबसेक्शन 8. उसके बाद 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसमें सबसे काम का पॉइंट है कि ऑडिटर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है अगर रेमुनरेशन पे नहीं की गई. द आंसर इज नो. ईएसबी का जजमेंट है, क्लियर कट जजमेंट है, ऑडिटर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. सेक्शन 143 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 15 सब सेक्शन है कुल मिलाकर इसके अंदर. तो अलग से सब सेक्शन को, फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वॉइस क्लिप भी है आपके पास. अब देखना 143 सब सेक्शन 1 क्या है, ऑडिटर के पास राइट है. अब देखना यहाँ छोटा सा अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है, 143 सब सेक्शन 1 में कहा गया था कि ऑडिटर के पास राइट है टू एक्सेस द बुक्स ऑफ द सब्सिडरी, वहाँ एसोसिएट का नाम मेंशन नहीं था. इन नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आल्सो इंक्लूडेड द वर्ड एसोसिएट, कि ऑडिटर के पास सबसे के साथ साथ एसोसिएट के बुक्स इंस्पेक्ट करने का भी राइट है. सब सेक्शन 1 में 6 इंक्वायरीज की भी बात की है, ऑडिटर हैज टू डू 6 इंक्वायरीज, और उसका फॉर्मूला है याद रखने का, LIC के ऑडिटर का BP हाई हो गया, यानी लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड 2 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 1 पॉइंट है, कैश से रिलेटेड 1 पॉइंट है, बुक एंट्री एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर. लोन्स एंड एडवांसेस हम ध्यान रखेंगे, अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दी है वो सिक्योर्ड है कि नहीं, और लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट के फॉर्म में दिखाया है कि नहीं. इन्वेस्टमेंट हम ध्यान रखेंगे कि अगर अदर देन एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर कंपनी का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा रखा है तो हमें इंक्वायरी करनी है. अगर कंपनी ने शेयर्स कैश में इशू कर रखा है तो कैश एक्चुअल में मिला कि नहीं मिला, और अगर मिला तो प्रॉपर्ली बुक्स में दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया. उसके बाद बुक एंट्रीज कहीं प्रिजुडिशियल तो नहीं है, एंड कहीं पर्सनल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट की गई है कि नहीं की गई है. 143 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. 143 सबसेक्शन 3 में कहा गया है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर क्या-क्या चीजें अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, क्या-क्या चीजें अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, दैट इज हमने फार्मूला याद किया था ABCD दीपिका पादुकोण. That is, ऑडिटर क्या इंक्लूड करेगा अपने रिपोर्ट में, ए से whether all the information and explanation has been obtained, whether the accounting standards has been complied, and adverse remark relating to the maintenance of books. बी से books of accounts properly maintained or not, balance sheet P&L books के हिसाब से है कि नहीं, और branch ऑडिटर का रिपोर्ट उसे मिला कि नहीं मिला तो उसने कैसे डील किया, सी का मतलब कंट्रोल्स, दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, डी से डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164 सबसेक्शन 2। अब ये जो रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्न ओवर 50 करोड़ से कम है एंड बॉरिंग 25 करोड़ से कम है। तो रिपोर्टिंग ऑन IFC ओपीसीज में एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है जिनका टर्नओवर कितना है 50 करोड़ से कम है और बोरिंग 25 करोड़ से कम है। एडिशनली रूल्स के हिसाब से ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करनी है कि कहीं देर इज नॉट ए डिले इन ट्रांसफर टू IEPF, पेंडिंग लिटिगेशन एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस, दैट इज दीपिका पादुकोण। डी से डिले इन ट्रांसफर टू IEPF, पी से पेंडिंग लिटिगेशन, पी से प्रोविजन ऑफ लॉसेस। उसके बाद सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट हिस्सा था 143 सबसेक्शन 12 टू 15 था, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, दैट इज अगर ऑडिटर को फ्रॉड का पता चलता है और अगर लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा है, फ्रॉड के अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, वो CG को रिपोर्ट करेगा। अगर रीजन टू बिलीव है तब भी रिपोर्ट करेगा। अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम है उसकी रिपोर्टिंग वो किसको करेगा? ऑडिट कमेटी को करेगा, और ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती तो बोर्ड को करेगा। और फिर पूरा का पूरा प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है कि जैसे ही फ्रॉड का पता चले तुम 2 दिन में बोर्ड को बताओ, बोर्ड 45 दिन में जवाब देगा, फिर 15 दिन के अंदर तुम को कम्युनिकेट कर दोगे, कम्युनिकेशन MCA को जाएगा, कम्युनिकेशन लेटर हेड में जाएगा, मेंबरशिप नंबर लिखी होगी, तुम्हारे सिग्नेचर्स लिखे होंगे। और ये जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है ये कॉस्ट ऑडिटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया तो 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट की बात करता है एंड 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 पार्ट्स ऑफ CAC की बात करता है। 144 क्या था? प्रोहिबिटेड सर्विसेज, दैट इज एड्स। 145 अगेन ज्यादा रेलेवेंट नहीं था, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 146 क्या था? अटेंडिंग द AGM। और 147 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी एमेंडेड सेक्शन है इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑडिटर, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑडिटर फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 143, 144, 145, क्या पेनल्टी लगने वाला है ऑडिटर के ऊपर? तो हमने बोला मिनिमम फाइन 5,25,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए। अब पहले क्या था? पहले ये था मैक्सिमम फाइन 5 लाख बोल दिया। सोचो भाई ऑडिटर की रेमुनरेशन 10,000 रुपए है, तुमने मैक्सिमम फाइन 5 लाख कर दिया, मतलब 50 times ऑफ द रेमुनरेशन। तो हमने क्या अमेंडमेंट किया यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम विल बी 5 लाख रुपीज और 4 times द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रावेंशन जानबूझ के की गई है, ऑडिटर ने जानबूझ के कॉन्ट्रावेंशन किया है, शेयर होल्डर्स को धोखा देने के इरादे से किया है, कंपनी को डिसीव करने के इरादे से किया है, तो यहाँ पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। कुछ स्टूडेंट के पास अगर मेरी बुक्स होगी तो शायद वहाँ पे 50,000 होगा, उसे करेक्ट करके आप 1 लाख रुपए कर देना। मैक्सिमम फाइन होगी 25 लाख रुपए और 5 लाख की जगह 25 लाख आ गया और 4 times की जगह यहाँ 8 times आ गया, यानी 8 times द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। तो ये पेनल्टी दी गई है 147 के अंदर। एंड उसके बाद सेक्शन 148 दैट इज कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। अब कॉस्ट ऑडिट के अंदर हमारे क्या इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑडिट रूल्स इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट रूल्स में वी हैव रूल 3, कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अब देखना कॉस्ट ऑडिट के पर्पस के लिए हमने कंपनीज को 2 parts में डिवाइड किया है। एक हमने कहा रेगुलेटेड सेक्टर्स, दूसरा हमने कहा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स में 6 sectors हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, शुगर इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था हमने, आपके पास फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, शुगर की फैक्ट्री है, आप घर जा रहे हो, पेट्रोल खत्म हो जाता है, नेचुरल गैस लेके घर तक पहुंचते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फोन करते हो, सर दर्द की दवा खा के सो जाते हो। तो 6 sectors ऐसे याद किया था। अब देखना चाहे कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, अगर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 crores है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। एंड दिस कंपनीज एक्सक्लूड द माइक्रो एंटरप्राइजेस, दिस इंक्लूड द स्मॉल एंटरप्राइजेस। रेगुलेटेड सेक्टर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है। रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए हमने बोला कि अगर कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मिलाते हुए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 crore है एंड एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर 25 करोड़ है, सारे कंपनी का टर्नओवर मिला के 50 करोड़, प्रोडक्ट्स का मिला के 25 करोड़, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के केस में हमने 50 करोड़ को 100 करोड़ बना दिए और 25 करोड़ को 35 करोड़ बना दिए। तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर हमने बोला सारे प्रोडक्ट्स का मिला के 100 करोड़, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का मिला के 35 करोड़, यानी 50 और 25 किसके केस में था? रेगुलेटेड के केस में था एंड 100 एंड 35 नॉन रेगुलेटेड के केस में है। फर्दर कॉस्ट ऑडिट 3 circumstances में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, कंपनी क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है और रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज 75% ऑफ रेवेन्यू को एक्सीड कर रहा है। दूसरा, कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है।
और तीसरा क्या कर रही है, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कैप्टिव कंजम्पशन कर रही है। तो तीन सर्कमस्टेंसेज में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू को एक्सीड कर जाती है, कंपनी एसएस एक्ट में ऑपरेट करती है, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कैप्टिव कंजम्पशन करती है। फर्दर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में मेंबर्स का कोई हक नहीं होता। कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट किया जाता है और बोर्ड उस रिपोर्ट को सीजी को इंटीमेट करती है। मेंबर्स हैव नो राइट टू गेट द एक्सेस टू द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो अपने को याद रखना है इन द चैप्टर ऑफ कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 to 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।